सन्दंश लक्षणं तदुदाहरणं च एकांगानुवादेन विधीयमानयोरंगयोर अंतराले विहितत्वं सन्दंशः यथाभिक्रमणे तदहि समानयते जुह्वाम् उपवृत तेजो वा इत्यादिना प्रयाजानुवादेन किञ्चिदंगं विधाय विधीयते यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते प्रेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् नूदते अभिक्रामं जुहोत्य विजित्यै इति तदनन्तरं यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद इत्यादिना किञ्चिदंगं विधीयते अतः प्रयाजाङ्गमध्ये विहितमभिक्रमणं तदंगं प्रयाजैरपूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावयेत् इति ज्ञाते कथमेभिरपूर्वं कर्तव्यम् इति कथं भावात् कांक्षाया सत्त्वात् सा च सन्दंश पठितैरभिक्रमणादिभिः शाम्यति न चाङ्गभावनायाः कथं भावाकांक्षाभावः भावना सामान्येन तत्रापि तत्सम्भवात् किसी मुख्य अंग के एक अंग का अनुवाद करके विधीयमान दो अंगों के बीच में किसी क्रिया के विहित होने को संदंश कहते हैं। उदाहरण के लिए अभिक्रमण स्थल में संदंश होता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, सर्वसम प्रयाज के एक अंग का अनुवाद समानयते जुह्वाम् उपभृत तेजो वा स्थिति वाक्य से किया जाता है। इस वाक्य का अर्थ है उपभृत नामक पात्र से जुहू में घी लाए। इसके पश्चात अभिक्रमण नामक क्रिया का विधान यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते प्रेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् नुदते अभिक्रामं जुहोत्य विजित्यै इस प्रकार जानने वाला पुरुष आदि प्रयाजों का अनुष्ठान करता है तो वह इन लोकों से शत्रुओं को भगा देता है। विजय के लिए अभिक्रमण याग का अनुष्ठान करना चाहिए। इसके पश्चात प्रयाज के एक अंग का विधान यो वही प्रयाजा नाम मिथुनम् वेद कोष्ठक जो प्रयाजों के मिथुन को जानता है कोष्ठक बन इत्यादि वाक्य से किया जाता है। अतएव प्रयास के दो अंगों घृतानयन एवं मिथुन वेद के मध्य पठित अभिक्रमण क्रिया भी संदंश न्याय से प्रयास का अंग समझी जाती है। प्रयाजाः कर्तव्याः विधि के अर्थबोध वाक्य प्रयाजैर पूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावयेत् होने पर कथम् एभिः पूर्वं कर्तव्यम् इस प्रकार कथम् भावाकांक्षा होने लगती है। इस कथम भावाकांक्षा की शांति संदंश पठित अभिक्रमण आदि क्रियाओं से होती है। यह भी कहना उचित नहीं है कि अंग भावना में कथम भावनाकांक्षा नहीं होती, यह इसलिए कि प्रत्येक भावना में कथम भावाकांक्षा रहती है। अंग भावना भी एक भावना ही है, अतः उसमें कथम भावाकांक्षा होगी। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी। संदंश लक्ष्यति एकांगानुवादेनेति तत्रोदाहरणमाह यथाभिक्रमण इति अभिक्रमणे येकस्य प्रयाजरूपस्यांगस्यानुवादेन विधीयमानयोः प्रयाजाङ्गयोरन्तराले विहितत्वं भवत्येव तदेवाह तद्धित्यादिना तद्धि अभिक्रमणं इत्यर्थः समानयते जुह्वामुपभृत् इति उपभृतो घृतपात्रविशेषान् जुह्वाम् जुहु रूप पात्र विशेषो घृतम समानयत इति मंत्रार्थ किंचिदंगमिति उपभृतः पात्रान् जुह्वाम् प्रयाजार्थम् घृतानयन रूपमंगमित्यर्थ तदनन्तरम् पीति अभिक्रमणानन्तरपित्यर्थ तदनन्तरम् पित्यस्य किंचिदंगम् विधीयत इत्युत्तरेणान्वयः प्रयाजांगमिति पाठे तु तस्यापि किञ्चिदङ्गमित्यनेन नोत्तरेणैवान्वयः भ्रातृव्यानिति शत्रुनित्यर्थः तुदत् इति व्यथयति अपतुदस्तीति वार्थः जयतीति यावत् अभिकामं जुहोत्य विजित्यै इति विजयावहनीयं सर्वतः संचरणं कृत्वा जुहुयादित्यर्थः मिथुनं वेदेति युगलं जानातीत्यर्थः अत इति प्रयाजानुवादेन विहित तदंग मध्ये विहितत्वादित्यर्थ ननु प्रयाजानामिति कर्तव्यता कांक्षा भावान तत्र सन्दंशेनाप्यभिक्रमणस्यांगत्वेनान्वयः साकांक्षस्यैव गुणे अन्वेषणेति न्यायादित्यत आह प्रयाजैरित्यादिना सा च प्रयाजानामिति कर्तव्यता कांक्षा सन्दंश लब्धैरेवाभिक्रमणादिभिः शाम्यतीत्याह सा चेत्यादिना तथा चोक्तम् परप्रकरणस्थानामङ्गे श्रुत्यादिभिः स्त्रीभिः ज्ञाते पुनश्च तेरे तैरेव संदंशेन तदिश्यते इति। ननु प्रयाज भावनाया अंग भावनात्वेन कथम भावाकांक्षा भावान्न प्रयाज भावना कथम भावेनाभिक्रमणम् गृह्यत इत्याशंकय परिहरति। न चित्त्यादिना प्रयाजादि भावना कथम भावाकांक्षा शून्य अंग भावना त्वादित्यत्र हेतुर साधारण नैकांतिकत्वात् साकांक्षत्वसाधने हेतु सत्वाच न प्रयाजादंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा शून्यत्व नित्याः। भावना सांगीनेति प्रयाजांग भावना कथम भाव साकांक्षा भावना तादर्शादि भावना वदिति प्रयोगोत्र बोध्यः। न चावहननादि भावना व्यभिचारः तस्याः पक्ष समत्वात् तत्रापि तत्संभवादिति प्रयाजांग भावनायामपि कथम भावाकांक्ष संभवादित्यर्थः। अर्थ बोधिनी संदंश का अर्थ सड़सी होता है। चूल्हे आदि पर चढ़े हुए गर्म पात्र संदंश से पकड़कर उतारे जाते हैं। संदंश में लोहे की दो शलाकाएं होती हैं, जिनके बीच में स्थित पात्र उन दोनों शलाकाओं के बाहर बिल्कुल नहीं जा पाता। अतः संदंश से पात्र उठाते समय हाथ से जितनी क्रिया संदंश से होती है उतनी पात्र में भी होती है, और वह पात्र उन दो शलाकाओं से बाहर नहीं जा पाता, इसलिए नहीं गिरता। और यदि कदाचित असावधानी हो जाती है, ठीक प्रकार से उन दो शलाकाओं के बीच में पात्र नहीं रह पाता, तो वह गिर जाता है। इसी प्रकार यज्ञ संबंधी विधान के अवसर पर जहाँ किसी एक अंगी के दो अंग कहे जाते हैं और उन दोनों के बीच कोई तीसरी क्रिया कही जाती है, तो वह तीसरी क्रिया जिसमें पहले उन दोनों क्रियाओं के अंगी के अंगत्व का निर्णय नहीं करता है, वहाँ मध्यवर्ती क्रिया भी उन्हीं दोनों परवर्ती क्रियाओं के अंगी का ही अंग मानी जाती है, क्योंकि दोनों क्रियाएं सरसी के शलाका द्वय स्थानीय और मध्यवर्ती वह क्रिया उत्तारणीय पात्र स्थानीय हो जाती है। अतः वह मध्यवर्ती क्रिया दोनों ओर की क्रियाओं के स्वभाव से वैजात्य नहीं रख पाती है, इसलिए उन दोनों की तरह वह मध्यवर्ती क्रिया भी उन दोनों क्रियाओं के अंग का ही अंग होती है। उदाहरण द्वारा इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। दर्श एवं पूर्णमास प्रधान याग है। दर्श पूर्णमास के अंग प्रयाज हैं। प्रयाज पांच क्रियाओं का समूह है। अंग भूत प्रयाज रूप क्रिया समूह का विधान प्रयाजाह कर्तव्याह विधि द्वारा किया जाता है। इसी को एकांगवाद कहा जाता है। पुनः प्रयाज समूह की क्रियाओं का पृथक पृथक विधान समिधो यजति आदि वाक्य से होता है। इसी पुनर्विधान को अनुवाद कहा जाता है। इस प्रकार समिधो यजति आदि वाक्यों से एकांगानुवाद होता है। इसके पश्चात प्रयाज के एक अंग क्रिया का विधान समान तेजुवाम उपभृत तेजोवान इस मंत्र से किया जाता है। इस क्रिया को घृतानयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ उपभृत नामक पात्र से घी लाकर जुहू में रखा जाता है। इसके पश्चात अभिक्रमण क्रिया का विधान यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते तैभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृवान् नुदते अभिक्रामं जुहोत्य विजित्य इस विधि से किया जाता है। इस क्रिया को अभिक्रमण कहते हैं, क्योंकि इसमें आह्वनियाग्नि के चारों ओर भ्रमण परिभ्रमण करते हुए यागानुष्ठान किया जाता है। अभी यह निश्चय नहीं है कि अभिक्रमण किसका अंग है, यही निश्चित करना है। इसके अनंतर प्रयाज की एक अंग क्रिया का विधान यो वै प्रयाजा नाम मिथुनम वेद इस विधि से किया जाता है। इस अंग का नाम मिथुन वेदन है। उक्त तीनों क्रियाओं का क्रम इस प्रकार है। एक घृतानयन प्रयाज की अंग क्रिया, दो अभिक्रमण, तीन मिथुन वेदन प्रयाज की अंग क्रिया। उस स्थिति को संदंश स्थिति कहा जाता है। यदि घृतानयन संदंश की एक शलाका है तो मिथुन वेद दूसरी शलाका अभिक्रमण पात्र स्थानीय है। ऐसी स्थिति में अभिक्रमण भी प्रयाज का अंग होगी, क्योंकि वह प्रयाज के अंगों के बीच में पठित है। प्रयाज के अंगों के बीच में पठित होने से अभिक्रमण क्रिया भी प्रयाज का अंग होगी। ध्यान रहे, अभिक्रमण न तो घृतानयन का अंग होगी और न ही मिथुन वेदन का, अभी तो प्रयाज का अंग होगी, क्योंकि घृतानयन एवं मिथुन वेदन भी प्रयाज के ही अंग हैं और उन्हीं दो के बीच में अभिक्रमण का पाठ मिलता है। प्रकरण होने के कारण अवान्तर प्रकरण भी उभयाकांक्षात्मक है। प्रयाज भावना में कथम भावाकांक्षा पाई जाती है। प्रयाजाह कर्तव्याह का अभिप्राय यह है कि प्रयाज का संपादन करके जो अपूर्व उत्पन्न हो उससे अंगीभूत दर्श पूर्णमास का उपकार हो। प्रयाजों के द्वारा अपूर्व कैसे उत्पन्न किया जाए। प्रयाजैर पूर्व कृत्वा यागोपकारं भाव एत इति ज्ञाते कथमेधीर पूर्वं कर्तव्यं इति कथं भावाकांक्षायाः सत्वात् इधर अभिक्रमण क्रिया का भी कुछ साध्य होना चाहिए। अतएव अभिक्रमण भावना साध्य की अपेक्षा रखती है, जिसका स्वरूप इस प्रकार होगा। अभिक्रमणेन किम भाव एत प्रयाजा प्रयाज भावना की कथम भावाकांक्षा एवी अपूर्वम कथम कर्तव्यम का शमन अभिक्रमणानुष्ठानेन अपूर्वम कर्तव्यम से हो जाता है। इस प्रकार अवांतर प्रकरण में प्रयाज एवं अभिक्रमण दोनों परस्पर साकांक्ष हुए। प्रयाज दर्श पूर्णमास के अंग हैं, अतएव प्रयाज भावना अंग भावना हुई। पूर्व पक्षी का आक्षेप है कि अंग भावना को कथम भावाकांक्षा की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग भावना स्वयं अपनी प्रधान भावना की कथम भावाकांक्षा का उपशमन करती है। दर्श पूर्णमासाभ्याम कथम स्वर्गम भाव एत, इस प्रकार कथम भावाकांक्षा होने पर प्रयाजोपकृताभ्याम दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भाव एत, इस प्रकार कथम भावाकांक्षा का उपशमन ही प्रयाजों का प्रयोजन है। सिद्धांति का उत्तर है कि भावना कथम भावाकांक्षा युक्त होती है, यह एक सामान्य नियम है। अतएव कैसी भी भावना हो, चाहे वह अंग भावना हो या प्रधान, उसमें कथम भावाकांक्षा अवश्य होगी। प्रयाज भावना भी भावना ही है, अतएव उसमें भी कथम भावाकांक्षा होगी। प्रसंग प्रकरण के द्वारा क्रिया का ही साक्षात भाव से विनियोग होता है। द्रव्य एवं गुण का विनियोग क्रिया के माध्यम से परम्परया होता है, इस विषय का विवेचन किया जा रहा है। प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम् तदिदं प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम् द्रव्य गुणयोस्तु तद् द्वारा तथा ही यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र फल भावनायां कथम भाव कांक्षायां सन्निधि पठिताश्रु यमाण फलकम् क्रिया जातमुपकार्याकांक्षेति कर्तव्यता तेनान्वेति। क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षायां अन्वय दर्शनात् न ही हस्तेन कुठारेण छिद्यात् इत्यत्र कथम भावाकांक्षायाम् उच्चार्यमाणोऽपि हस्तोऽन्वेति किन्तु हस्तेनोद्यम्य निपात्येति उद्यमन निपातने एव हस्तश्च तद्वारे वान्वेतीति सर्वजनिनमेतत् अर्थ। पूर्वोक्त द्विविध प्रकरण द्वारा ही साक्षात रूप से विनियुक्त समझी जाती है। द्रव्य एवं गुण तो क्रिया द्वारा परम्परया विनियुक्त अर्थात अंगभूत समझे जाते हैं। उदाहरण के लिए यजेत स्वर्ग कामः एक विधि है। यहाँ याग से स्वर्ग रूप फल का संपादन कैसे करना चाहिए, इस प्रकार फल भावना में कथम भावाकांक्षा होने पर यजेत स्वर्ग कामः इस विधि के समीप में पठित वह क्रिया का समूह जिसके फल का निर्देश नहीं किया गया है उपकार्य की आकांक्षा से इति कर्तव्यता के रूप में अन्वित होता है। लोक में भी यह काम कैसे करे, इस तरह कथम भावाकांक्षा होने पर क्रिया का ही अन्वय देखा जाता है। अगर कोई कहे कि हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात् अर्थात हाथ से कुल्हाड़े के द्वारा लकड़ी काटनी चाहिए, यहाँ कैसे काटे, इस प्रकार कथम भावाकांक्षा होने पर हाथ भी अन्वित हो जाता है, क्रिया तो नहीं अन्वित होती, तो यह कथन भी समीचीन नहीं है। कारण उक्त प्रकार से कथम भावाकांक्षा होने पर हाथ से कुल्हाड़े को उठाकर और गिराकर काटे, इस प्रकार उठाना और गिराना ये क्रियाएं साक्षात रूप से अन्वित होती है। हाथ तो उद्यमन निपातन रूप क्रिया के द्वारा ही परम्परया अन्वित होता है, यह बात सभी लोग जानते हैं। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी निरूपित प्रकरणस्य साक्षात विनियोज्य विषय मुपन्यस्यति तदिदमित्यादिना प्रकृतस्यैव व्यवहित विनियोज्यमादर्शयति द्रव्येति तद्वारेति क्रियाद्वारेत्यर्थ। अत्र च द्रव्यस्य क्रियाद्वारैव प्रकरणम् विनियोजकं गुणस्य तु द्रव्य क्रियोभय द्वारा विनियोजक मिति भाव फल भावनाया मिति फल भावनायां क्रिया जात मिति कर्तव्यता स्वेनान्वेति संबंध भिन्न प्रकरणस्थ क्रियाया अन्यत्र क्रियायां व्यापत्ति वारणाय सन्निधि पठित मित्युक्तम् श्रूयमाण फलस्य क्रिया जातस्य ति कर्तव्याय कर्तव्यतात् वारणाया श्रूयमाण फलमित्युक्तम् प्रधानस्योपकारकांक्ष भावे तत् तदन्वयादर्शनात् कथम् भावाकांक्षामित्युक्तम् गुणस्याप्युपकार्याकांक्षाभावेऽप्युपकारकत्वेनान्वयादर्शनादुपकार्याकांक्षेत्युक्तम् इति कर्तव्यता कांक्षायां क्रियाया एव साक्षादन्वये लोक प्रसिद्धिं हेतुत्वेन दर्शयति। क्रियाया एवेत्यादिना क्रियाया एवान्वय दर्शनादित्यन्वय इत्यर्थ। कुठारेण छिन्द्यादित्यत्र कथमिति कथं भावाकांक्षायां हस्ते नेत्युच्चार्यमाणोऽपि हस्तो न हि छिद्दि भावनायां साक्षादन्वेतीत्यभिप्रत्याह न हित्यादिना। उद्यमन निपातने एवान्वित इति शेषः उद्यमनम् च निपातनम् चोद्यमन निपातने इति द्विवचनम् सन्धिस्तु लेख प्रमादतः यद्वा उद्यमनेन निपातन उद्यमन निपातन इति व्याख्येयम् अत्र चान्वेत्तित्यनुसङ्ग तद्द्वारैवेति उद्यमन निपातन द्वारैवेत्यर्थ सर्वजनिनमिति सर्वेषु जनेषु भवमित्यर्थ सर्वजन प्रसिद्धमिति यावत् किञ्च कथं भावाकांक्षा नाम करणगत प्रकारकांक्षा समुनः प्रकारवाचित्वात् सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकारः सामान्यं च क्रियारूपमेवाख्याते नोच्यते यजेत स्वर्गकाम इत्यस्य यमर्थ यागेन तथा कर्तव्यं यथा स्वर्गो भवतीति क्रिया सामान्यस्य च विशेषः क्रियैव भवति न हि ब्राह्मण विशेषः परिव्राजकादि ब्राह्मणो भवति एवञ्च करणगत क्रिया विशेषाकांक्षा परनामधेयायाम् कथं भावाकांक्षायाम् क्रियैवान्वेतीति युक्तम् स च करणगतः क्रिया विशेषोऽन्वाधानादि ब्राह्मण तर्पणान्तः क्रियारूप एवेति युक्तम् तस्य प्रकरणैरेणैव ग्रहणम् तस्य च करणगतत्वम् तदुपकारकत्वेमेव तेन विना यागेनापूर्वाजननात् न युद्यमन निपातन व्यतिरेकेण कुठारेण द्वैति भावो जन्यते तत् सिद्धम् कथम् भावाकांक्षया क्रियै वान्वेतीति। तदिदम् प्रकरणम् स्थानादितो बलीयो भवति तथा हि राजसूय प्रकरणे पश्विशिष्ट सोमभागा बहवः समप्रधान भूताः पठ्यन्ते तत्र च कश्चिद् विशेषणीय संज्ञकः सोमयागः पठितः तस्य हि सन्निधौ विदेवनादयो धर्मा अक्षर दिव्यति राजन्यम् जिनाति शौनः शेप माख्यापयतीमिति श्रूयन्ते जिनाति जयतीत्यर्थ। बहवच ब्राह्मणे सन्निधि समानातम् सुनः शेप विषयमुपाख्यानम् शौनः शेपम् तदाख्यापयतीत्यर्थ। तत च विदेवनादिनाम् सन्निधि बलाद विशेषणीयाङ्गत्वमिति प्राप्ते राद्धान्तः राजसूयेति कर्तव्यताकांक्षायामनुवृत्त्यायाम् विहिता। विदेवनादयः प्रकरणेन राजसूयशेषा एव भवन्ति। राजसूयस्य बहुयागात्मको भवति ततश्च तत्र सर्वयागशेषत्वम् विदेवनादिनाम् सिध्यति किञ्चाधिशेषणीयस्य काञ्चिदप्याकाङ्क्षा विदेवनादिषु नास्त्येव तस्य ज्योतिष्टोम विकृतित्वेनादि दिष्टेरैव प्राकृतांगदाकांक्षा निवृत्तेः अर्थबोधिनी। अन्य प्रमाणों की भांति महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण दोनों प्रकरणों के द्वारा अंगा अंगी भाव का बोध होता है, किंतु जहाँ श्रुति एवं लिंग आदि अन्य प्रमाणों से गुण आरुण्य संख्या द्रव्य व्रीही क्रिया प्रोक्षण लिंग पुंस्त्व एवं मंत्र आदि अंग रूप में समझे जाते हैं, वहाँ दोनों प्रकार के प्रकरण प्रमाणों से क्रिया ही अंग रूप में समझी जाती है, अर्थात प्रकरण साक्षात रूप से केवल क्रिया के विनियोजक होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकरण प्रमाण स्थल में द्रव्य एवं गुण का विनियोग होता ही नहीं। द्रव्य एवं गुण का विनियोग परंपरा क्रिया के माध्यम से होता है और क्रिया विनियोग साक्षात रूप से होता है। इसका कारण यह है कि प्रकरण स्थल में सर्वत्र उभयाकांक्षा होती है और अंगी क्रिया की ओर से कथम भावाकांक्षा होती है। अंगी क्रिया के फल का संपादन किस प्रकार करना चाहिए, जैसे यजेत स्वर्ग काम वाक्य में यागेन स्वर्गम कथम भाव एत इस प्रकार कथम भाव की आकांक्षा है अथवा प्रयाजा कर्तव्या इस प्रकार विधान होने पर प्रयाज ही कथम अपूर्वम भाव एत इस प्रकार कथम भावाकांक्षा होती है। इस तरह हम देखते हैं कि अंगीभूत क्रिया भावना सदैव कथम भाव की आकांक्षा से युक्त रहती है। इस आकांक्षा की शांति अंग से होती है। अंग से कथम भावाकांक्षा की शांति तभी हो सकती है जब अंग क्रिया हो, क्योंकि कैसे या किस प्रकार करे का उत्तर क्रिया ही हो सकता है। वस्तुतः कैसे या किस प्रकार करे के मूल में क्रिया संपादन प्रकार की आकांक्षा निहित है, जिसका शमन किसी क्रिया से ही हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि यह कहा जाए कि कुल्हाड़े से काटो और इस पर कोई पूछ बैठे कि किस तरह या कैसे काटें, तो इसका उत्तर होगा कुल्हाड़े को उठाकर और गिराकर उससे काटो। इस प्रकार कैसे का उत्तर उठाना गिराना ये क्रियाएं हुई, किस तरह काटे का उत्तर हाथ में यह नहीं होगा, क्योंकि यह उत्तर तो किससे या किसके द्वारा इस प्रश्न का होगा। और भी उठाने गिराने के संबंध में, अर्थात यदि यह प्रश्न हो कि किससे उठाए, तो उत्तर होगा हाथ से। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह काटे का उत्तर उठाना गिराना क्रियाएं है, न कि हाथ। हाँ, हाथ उठाने गिराने क्रियाओं का अंग होने से उद्यमन निपातन क्रिया के द्वारा छेदनात्मक मुख्य क्रिया से अन्वित होता है, साक्षात रूप से नहीं, साक्षात रूप से अन्वय क्रिया का होता है। उक्त लौकिक दृष्टांत से सभी लोग परिचित हैं। इसी के आधार पर यह समझ लेना चाहिए कि प्रकरण स्थल में भी क्रिया ही साक्षात रूप में विनियुक्त होती है एवं द्रव्य तथा गुण क्रिया के द्वारा ही अन्वित होते हैं, साक्षात रूप में नहीं। प्रसंग अब प्रकरण एवं स्थान प्रमाण के बलाबल पर विचार किया जा रहा है। प्रकरण से स्थानादिभ्यो बलवत्तम इदम च स्थानादिभ्यो बलवत् अतएव अक्षर दिव्यति राजन्यम जिनाति इति वेदनादयो धर्मा अभिशेचनीय सन्निधौ पठिता अति स्थानान्न तदंगम किंतु प्रकरणा द्राज सुयांगम। अर्थ, यह प्रकरण स्वपरवर्ती स्थान आदि सभी प्रमाणों से बलवान होता है, इसलिए अक्षर दिव्यति गोटों से जुआ खेलता है और राजन्यम जिनाति राजा को जीतता है। इस प्रकार देवन जुआ खेलना आदि धर्म अभिशेचनीय क्रिया के समीप पठित होने पर भी स्थान प्रमाण से उस अभिशेचनीय क्रिया का अंग नहीं होते हैं, अपितु प्रकरण प्रमाण से राज्य सूर्य के अंग होते हैं। ननु सन्निहित विधि बलादा कांक्षोत्थापयत् इति चेत् तर्हा का गरूपम अंतराले प्रकरण मादौ परिकल्प्य तद्वारा वाक्य लिंग श्रुति कल्पनया सन्निधिर विप्रकृष्यते राजसूयाकांक्षा रूपम महाप्रकरणं तु क्लिप्तत्वादेकया कांक्षया सन्निकृष्यते ततश्च प्रकरणेन सन्निधेर बाधात् सर्वे यागशेषा विदेव नादयो धर्मा इत्यभिप्रेत्य प्रकरणस्य स्थानादिभ्यो बलवत्तमाह इदं चेत्यादिना। अर्थबोधिनी, प्रकरण प्रमाण स्वपरवर्ती स्थान एवं सामाख्या नामक प्रमाणों से अधिक बलवान होता है। प्रकरण केवल उक्त दो प्रमाणों से बलवान है, अतएव ग्रंथकार को स्थानादिभ्य इस बहुवचनांत पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हाँ, स्थान प्रमाण के तीन प्रभेद और सामाख्या प्रमाण के दो प्रभेद, इस प्रकार कुल मिलाकर पांच प्रभेदों की दृष्टि से बहुवचनांत स्थानादिभ्य पाठ को उचित माना जा सकता है। प्रकरण स्थान प्रमाण से अधिक बलवान है, इस कथन की पुष्टि में दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। राजसूय एक याग है जिसके अंतर्गत अनेक याग हैं, जिसमें से एक अभिशेचनीय नामक सोमयाग भी है। इसी अभिशेचनीय याग के समीप अक्षर दिव्यति राजन्यम जिनाति शौन शेप माख्यापयति इस मंत्र का पाठ है। इस मंत्र से जुआ खेलना ज्ञान एवं आख्यापन आदि धर्मों का विधान है। अभिशेषणीय ज्योतिषम का विकृति याग भी है। अब प्रश्न यह है कि अक्षर दिव्यति इत्यादि मंत्र द्वारा विहित देवन जुआ खेलना आदि धर्म प्रकरण प्रमाण से राजसूय बोध्य सभी यागों के अंग होंगे, या स्थान प्रमाण से केवल अभिशेषणीय के राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेति यह विधि है। इसका अर्थ बोधवा के इस प्रकार होगा, राजा राजसूय यागेन स्वराज्यम भावयेत। यहाँ भावना कथम भावाकांक्षा है, अर्थात राजसूय यागेन स्वराज्यम कथम भावेत, इस प्रकार इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है। इस इति कर्तव्यता की आकांक्षा का शमन देवन आदि धर्मों से होता है। इधर देवन आदि धर्मों में भी साध्याकांक्षा है, अर्थात इनसे क्या किया जाए, इसलिए यहाँ उभयाकांक्षा होने से प्रकरण मान्य होता है और प्रकरण द्वारा देवनादि धर्म राजसूय के अंग होते हैं, अर्थात देवनादि धर्म राजसूय के अंतर्गत सभी यागों के अंग होते हैं। इन यागों में से अभिशेचनीय भी अन्यतम है। अभिप्राय यह है कि प्रकरण प्रमाण से देवनादि धर्म राजसूय की सभी इकाइयों का, जिनमें अभिशेचनीय याग भी एक इकाई है, अंग होते हैं। अभिशेचनीय और देवनादि धर्मों के बीच उभयाकांक्षा नहीं है, क्योंकि अभिशेचनीय ज्योतिषम का विकृति याग है। अतएव अभिशेचनीय की कथम भावाकांक्षा का शमन प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य इस अतिदेश वाक्य से हो जाता है। अतः उभयाकांक्षा न होने से अभिषेचनी एवं देवनारी धर्मों के अंगांगी भाव के निश्चय में प्रकरण प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो सकता। यद्यपि अभिषेचनीय कथम भावाकांक्षा नहीं है, तथापि इसके समीप देवनादि धर्मों का पाठ पाया जाता है। इसलिए यदि कथम अपि उसे कथम भावाकांक्षा एवं देवनादि धर्मों को आकांक्षा शामक मान लिया जाए, तो अभिषेचनी एवं देवनादि धर्मों के बीच अंगांगी भाव का निश्चय किया जा सकता है। उक्त स्थिति स्थान प्रमाण द्वारा मान्य होती है। इसके पश्चात एक उभयाकांक्षा रूप प्रकरण, दो वाक्य, तीन लिंग एवं चार श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है, तक नहीं कहीं जाकर विनियोग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थान प्रमाण से विनियोग मानने पर स्थान एवं विनियोग के बीच चार प्रमाणों का व्यवधान है, जबकि प्रकरण प्रमाण से विनियोग मानने पर प्रकरण और विनियोग के बीच केवल तीन प्रमाणों का प्रकरण स्थान की अपेक्षा विनियोग के अधिक समीप है, अतः अधिक बलवान है। इसलिए देवनादि धर्म प्रकरण से राजसूय के अंग होते हैं, स्थान प्रमाण से अभिषेचनीय के ही अंग नहीं। प्रसंग अब स्थान प्रमाण का लक्षण एवं उसके प्रभेदों का निरूपण प्रस्तुत है। स्थान लक्षणम देश सामान्यम स्थानम तद द्विविधम पाठ सादेश्यम अनुष्ठान सादेश्यम चेति स्थानम क्रमश्चेत्य नर्थान्तरम पाठ सादेश्यम अपि द्विविधम यथा संख्य पाठ सन्निधि पाठ चेति। अर्थ देश की समानता को स्थान प्रमाण कहते हैं। स्थान प्रमाण के दो भेद होते हैं, पाठ सादेश्य एवं अनुष्ठान सादेश्य। स्थान एवं क्रम शब्द एकार्थवाची है, अर्थात प्रकृति स्थल में स्थान शब्द का अर्थ क्रम है। पाठ सादेश्य के भी दो प्रभेद होते हैं, एक यथासंख्य पाठ और दो सन्निधि पाठ। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी स्थानम लक्ष्यति देश सामान्यमिति सन्निधि विशेषत्वमिति लक्षणांतरम स्थानम क्रमशेति लक्ष्यत्वेन निर्दिश्यते पाठ सामान देशत्वेन अनुष्ठान समान देशत्वेन च स्थानम विभजते तद द्विविधम इत्यादिना यथा संख्य पाठत्वेन सन्निधि पाठत्वेन च पाठ समान देश तमपि विभजते पाठ सादेश्य इत्यादिना। अर्थबोधिनी देश की समानता अर्थात स्थान की समानता को स्थान प्रमाण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि पिछले विभाग में प्रतिपादित किया गया है, अभिषेचनीय याग एवं देवनादि धर्मों का पाठ समान देश अर्थात एक ही स्थान पर पाया जाता है, अतएव स्थान की समानता को स्थान प्रमाण माना गया है। स्थान का अर्थ क्रम भी होता है, अतएव जो विनियोग क्रम के आधार पर होता है उसे स्थान प्रमाण बोध्य मानना चाहिए। स्थान प्रमाण के दो भेद हैं, एक पाठ सादेश्य एवं दो अनुष्ठान सादेश्य। पाठ सादेश्य के भी दो भेद हैं, एक यथा संख्य पाठ और दो सन्निधि पाठ। इन सभी प्रभेदों का विवरण अग्रिम विभागों में प्राप्त होता है। प्रसंग पहले पाठ सादेश्य के प्रथम प्रभेद यथा संख्य पाठ के स्वरूप का प्रतिपादन किया जा रहा है। यथा संख्य पाठाद विनियोग तत्र इंद्राग्नमेकादश कपालम निर्वपेत वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत इत्येवं क्रम विहितेषु इंद्राग्नि रोचनादिव इत्यादिनां व्याज्यानुवाक्या मंत्राणां यथा संख्य प्रथमस्य प्रथम द्वितीयस्य द्वितीय मित्येवं रूपो विनियोगो यथा संख्य पाठात् प्रथम पठित मंत्रस्य हि कैमर्थ्याकांक्षायां प्रथमतो विहित कर्मैव प्रथममुपतिष्ठते समान देशत्वात् एवं द्वितीय मंत्रस्यापि। अर्थ यथा संख्य से होने वाले विनियोग को उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझना चाहिए। इंद्राग्न मेकादश कपालम निर्वपेत एवं वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत इन दो विधियों का क्रमशः पाठ प्राप्त होता है। इन विधियों का अर्थ क्रमशः इस प्रकार है। इंद्र एवं अग्नि के लिए 11 कपालों में निर्मित पुरोडाश का निर्वाप करना चाहिए एवं वैश्वानर के लिए 12 कपालों में तैयार किए गए पुरोडाश का निर्वाप करना चाहिए। उक्त दो विधि वाक्यों के पश्चात इंद्राग्नि रोचना दिवह इंद्र एवं अग्नि द्यूलोक के प्रकाशक हैं आदि याज्ञानुवाक्या मंत्रों का पाठ मिलता है। अब यथा संख्य पाठ से यह बोध होता है कि प्रथम मंत्र प्रथम विधि बोध क्रिया का अंग है और द्वितीय मंत्र द्वितीय विधि बोध क्रिया का अंग है। इसलिए है कि प्रथम मंत्र के विषय में यह मंत्र किसके लिए है। इस प्रकार कैमर्थ्याकांक्षा होने पर प्रथम पठित क्रिया ही पहले बुद्धि में उपस्थित होती है, क्योंकि जैसे यह मंत्र पहले स्थान पर है वैसे ही क्रिया भी प्रथम स्थानीय है। इस प्रकार दूसरे मंत्र के विषय में भी समझ लेना चाहिए। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी तत्र यथा संख्य पाठत्वेन समान देशत्वं समुदाहरिति तत्र इन्द्राग्नमित्यादिना प्रथमस्य प्रथमिति प्रथमस्य इन्द्राग्निमित्येन्द्राग्नेष्टि यागस्य इन्द्राग्नि रोचनादिव इति प्रथमं याज्य नुवाक्या युगलमंगम द्वितीयस्य वैश्वानरमिति वैश्वानरेष्टि यागस्य वैश्वानरो जीजन दित्यादि द्वितीयम् अंगमित्यर्थ एव रूपे विनियोगे हेतुमाह प्रथम पठित मंत्रस्य इत्यादिना कैमर्थ्याकांक्षायामिति किमर्थो अयम् मंत्र इति कैमर्थ्याकांक्षायामित्यर्थ एवं द्वितीय मंत्रस्यापिति किमर्थो अयम् मंत्र इति द्वितीय मंत्रस्यापि कैमर्थ्याकांक्षा द्वितीय स्थाने विहितमेव कर्मोपतिष्ठते समान देशत्वादित्यर्थ को अर्थो यस्य स किमर्थ तस्य भावः कैमर्थ्यम तस्याकांक्षामिति निरुक्त्या किमनेन मंत्रेण भाव्यमिति सिद्ध्यति। अत्र च क्रमस्योदाहरणान्तरमपि वर्तते तथा हि दर्शपूर्णमासयो राध्वर्यवे कांडे आग्नेयोपांशु याजाग्निशोम्य यागाः क्रमेणाम्नाताः यजमाने च कांड आग्नेयादिविशत् यास्ते नैव क्रमेण मंत्रा आम्नातः अग्निरहम् देव यज्ञ यान्नादो भूयासम् दग्धिरस्य दग्धो भूयासम् अमुम् दभेयमग्निशोमयोरहम् देव यज्ञ या वित्रहा भूयासमिति तत्राद्यन्तयोराग्नेयाग्निशोम्ययो कर्मणो राद्यन्तौ मंत्रौ मध्यमस्य चोपांशु याजस्य कर्मणो मध्यमो दग्धिरस्य दग्धो भूयासमुं दभेयमिति मंत्रोंगम तस्य च ब्राह्मणवाक्यमेव माम नायते एतया वैदब्धया देवा असुरान तभ्रुवन तयैव भ्रातृव्यं दाम्नोतिति दिधर्घातक मायुधमित्यर्थ च चाग्नेयाग्निशोम्य योरप्यनिष्ट निवारकत्वेन साधारण लिंगेन दब्धि मंत्रस्यांगत्वं किं न स्यादिति वाच्यम् यथा वाक्य द्वयानुसंधानेन संपन्नं प्रकरणं पृथक प्रमाणं तथा प्रकरण द्वयानुसंधान संपन्नेन क्रमण प्रमाणे नोपांशु याजे तस्य मंत्रस्य विनियोगात् न च क्रमस्य प्रकरणस्य प्रकरणो अंतर्भाव इति वाच्यम् द्वयोर्वाक्ययोरिव प्रकरणयोरेकवाक्यत्वाभावात् तस्मात् प्रमाणेन मध्यवर्तिन उपांशु याजस्य मध्यवर्ति मंत्रोऽङ्गम् समान देशत्वादिति यथा संख्य पाठात्व विनियोग उक्तः अर्थबोधिनी इन्द्राग्नम् एकादश कपालम् निर्वपेत एवं वैश्वानरम् द्वादश कपालम् निर्वपेत। इन दो विधियों द्वारा क्रमशः इन्द्राग्न याग एवं वैश्वानर याग का विधान प्राप्त होता है। पुनः मैत्रायणी संहिता में ही दो याज्ञ नवाक्या संज्ञक युग्म मंत्रों का पाठ इन्द्राग्नि रोचनादिव एवं वैश्वानरोजी जनत आदि से प्रारंभ होते हुए प्राप्त होते हैं। उक्त विषय को स्पष्ट रूपेण इस प्रकार समझा जा सकता है। याग पाठ की क्रम संख्या संख्या एक इन्द्राग्न याग संख्या दो वैश्वानर याग याज्ञानुवाक्या मंत्र पाठ की क्रम संख्या संख्या एक इन्द्राग्नि रोचनादिव आदि से प्रारंभ किया गया याज्ञानुवाक्या संख्या दो वैश्वानरोजी जनत आदि से प्रारंभ किया गया याज्ञानुवाक्या इन्द्राग्नि रोचना दिवह आदि प्रथम स्थानीय मंत्र पढ़ते समय यह जिज्ञासा होती है कि इस मंत्र का फल क्या है, यह मंत्र किमर्थक किम प्रयोजनक है। इस प्रकार कैमर्थ्याकांक्षा होने पर आकांक्षा की शांति प्रथम स्थानीय इन्द्राग्नि याग से होती है। जैसा कि ऊपर क्रम संख्या से स्पष्ट हो गया है कि इन्द्राग्नि रोचना दिवह की संख्या एक है और इन्द्राग्नि याग की भी संख्या एक है। इस प्रकार यथा संख्य पाठ द्वारा इन्द्राग्नि रोचना दिवह आदि याज्ञानुवाक्या मंत्र इन्द्राग्नि याग के मंत्र होते हैं, इसी प्रकार वैश्वानरोजी जनत आदि याज्ञानुवाक्या मंत्र वैश्वानर याग के अंग होते हैं। प्रसंग संप्रति पाठ सादेश्य के द्वितीय प्रभेद सन्निधि पाठ के स्वरूप का निरूपण क्रम प्राप्त है। 43 सन्निधि पाठाद विनियोग वैकृतांगानां प्राकृतांगानुवादेन विहितानां संदंश पतितानां विकृतित्यर्थत्वं सन्निधि पाठा तथा आमन होमानां तेषां हि कैमर्थ्याकांक्षायां फलं विकृत्य पूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यते उपस्थितत्वात् स्वतंत्र फलकत्वे विकृति सन्निधि पाठानर्थक क्यापत्तेह। अर्थ: प्रकृतिया के अंगों के अनुवाद से भी जो विकृतिया के संदंश पठित अंग होते हैं वे सन्निधि पाठ रूप प्रमाण से विकृतिया के अंग समझे जाते हैं। जैसे आमन होम सन्निधि पाठ से विकृत का अंग होते हैं क्योंकि आमन होम किम भावेत, इस प्रकार आमन होमों के फल के संबंध में आकांक्षा होने पर विकृति याग जन्य अपूर्व अर्थात पूर्ण ही साध्य रूप में अन्वित होता है। इस प्रकार आमन होम विकृति याग के अंग समझे जाते हैं। आमन होम विकृति याग के समीप पठित होने के कारण ही विकृति याग के अंग होते हैं। यदि आमन होमों का फल विकृति के अपूर्व के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से और कुछ होता है तो इन आमन होमों का पाठ विकृति याग के समीप होता ही क्यों? फिर तो विकृति याग के समीप इनका पाठ ही व्यर्थ हो जाएगा। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी। सन्निधि पाठात्तु यानि वैकृतान्यांगानि प्राकृतांगानुवादेन विहितानि संदंश पतितानि तेषां विकृतो विनियोग इत्याह। वैकृतांगाना मित्यादिना तत्रोदाहरणमाह यथा आमन होमाना मिति अमन से स्वाहा रेतस्विने स्वाहे इत्यादय आमन होमा यद्वा अमनो होमाना मिति पाठ प्रामादिक एव किन्त्वामन होमानामिति सकार रहित आपूर्व एव पाठः साधु। तत्र च वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद ग्रामकाम इत्यस्य काम्येष्टि यागस्य सन्निधौ श्रूयन्त आमन होमा आमन देवा इति तिस्र आहुतिर्जुहोतीति नन्वामन होमानां फलाकांक्षायां फलवद्धिकृत्य पूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यत इत्यसत् तेषां मुखया गत्वे विरोधाभावात् याग्नियादिनां षण्णाम् अनुमत्यदिनां च बहुनां मुख्यत्वं विरुद्धमित्याशंक यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकाम इति वाक्येनाग्नियादिनां फलसम्बन्धावगमस्तथा न होमानां फलसम्बन्धावगमाभावान्न प्राधान्यं युज्यते। सांग्रहणीं निर्वपेद ग्रामकाम इति वाक्यस्य तु सांग्रहण्या एव फलसम्बन्धबोधकत्वे नामन होमानां तत्सम्बन्ध बोधकत्वाभावात् तस्मात् फलवत्सन्निधा व फलं तदङ्गमिति न्यायात् फलवत्या सांग्रहण्या सन्निधा वाम्नाता अफला आमन होमा सदङ्गमित्यभिप्रेत्य किमर्था इमे किलेति कैमर्थ्याकांक्षायां फलवत्तया विकृत्य पूर्वस्यैव भाव्यत्वेन सम्बन्धे हेतुमाह उपस्थिति स्वादिति सन्निधि प्रमाणेनोपस्थित्वा दित्यर्थ नन्वा मन होमानाम सांग्रहणे सन्निधि पाठेपि विश्व जिन्यायेन स्वतंत्र फलकत्वमेव किम् न स्यादित्य आह स्वतंत्र फलकत्व इत्यादिना फलवत् कर्मा सन्निधौ पठितस्यैवा श्रूयमाण फलस्य विश्व जिन्यायेन स्वतंत्र फलं कल्प्यते अन्यथा प्रयाजा दिनामपि तन्यायेन स्वतंत्र फलकत्वापत्तिः स्यात् अफलस्य फलवत् सन्निधौ पाठस्तु तदङ्गत्वायैव तद्भावे अनर्थकत्वेमेव तस्या पद्येतेति भावः। अर्थबोधिनी। सांग्रहणी एक विकृति याग है। इसका प्रकृति याग दर्शपूर्ण मास है। वैश्वदेवीं सांग्रहणी निर्वपेद ग्राम कामः विधि द्वारा सांग्रहणी का विधान किया गया है। सांग्रहणी के निकट ही आमन हामो का विधान है। आमन होमों की संख्या तीन है। इनका अनुष्ठान आमन से स्वाहा रेतस्विने स्वाहा आदि मंत्रों के उच्चारण द्वारा होता है, इसलिए इन दोनों को आमन होम कहते हैं। ये आमन होम प्रयाज एवं अनुयाज के मध्य में विहित हैं। इस प्रकार सांग्रहणी नामक विकृति याग में दर्शपूर्ण मास नामक प्रकृति यागो से अतिदेश प्राप्त प्रयाज एवं अनुप्रयाज संज्ञक अंगों के बीच आमन होमों का विधान है। आमन होमो का क्या फल है? ऐसी आकांक्षा होने पर सांग्रहणी जन्य अपूर्व ही इनके अनुष्ठान का फल ठहरता है, क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र कोई फल नहीं है। अन्यथा यदि इनका कोई स्वतंत्र फल होता तो भला आमन होमो का दर्शपूर्ण मास के विकृति भूत सांग्रहणी के निकट फल रहित रूप में पाठ क्यों होता? अतः इस सन्निधि पार्श्व प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि सांग्रहणी जन्य अपूर्व ही आमन होमों का फल है। इस प्रकार सन्निधि पाठ के कारण ही ये आमन होम सांग्रहणी के अंग अर्थात उपकारक निर्णित होते हैं, अर्थात सन्निधि पाठ से आमन होम विकृति सांग्रहणी के अंग समझे गए। प्रसंग अनुष्ठान सादृश्य से होने वाले विनियोग का प्रदर्शन करते हैं। अनुष्ठान सादृश्य विनियोग पशु धर्माणाम अग्निशोम्यार्थत्व अनुष्ठान सादृश्यात् औपवस्थेहनि अग्निशोम्यः पशुरनुष्ठीयते तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यते अतस्तेषां कर्मर्थ्याकांक्षायाम् अनुष्ठेयत्वे नोपस्थितं पश्य पूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यते। अर्थ अनुष्ठान सादृश्य संज्ञक स्थान प्रमाण से समझ जाता है कि पशु संबंधी क्रियाएं अग्निशोम्य नामक पशु का अंग होती हैं। औपवसथ्य नामक दिन में अग्निशोम्य पशु का अनुष्ठान होता है, उसी दिन उन क्रिया का पाठ मिलता है। अतएव उन दोनों क्रियाओं के संबंध में आधीय क्रियाधीय किम भावेत, इस प्रकार कैमर्थ्याकांक्षा अर्थात फलाकांक्षा होने पर अनुष्ठेय रूप में उपस्थित जो अग्निशोम्य पशु जन्य अपूर्व है वही साध्य रूप में अन्वित होता है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी सन्निधि पाठ सादेशेन विनियोगम निरूप्यानुष्ठान सादेशेन विनियोगम निरूपयति पशु धर्माणामित्यादिना पशु धर्मा ह्युपाकरण पर्यग्निकरणादयस्तत्र प्रजापते जायमानाः इदं पशु मित्याभ्याम मृगभ्याम पशुरूप स्पर्शनम उपकारणम दर्भज्वालया त्रि प्रदक्षिणी करणम पर्यग्निकरणम यूपे रज्वा बंधनम यूप नियोजन मित्या दयो बोध्या तेषाम अनुष्ठान समान देशत्वाग्निशोमीय पशु शेषत्वमेव न तु सवनीयादि शेषत्वमित्यर्थः। किंच ज्योतिष्टोम प्रकरणे त्रयः पशवः समानाताः अग्निशोमीयः सवनीयो नुबंध्य शेति तत्राग्निशोमीयः पशु सत्य नाम का दहनः प्राचीने औपवसथ्या नामके नि धिष्ठ्य निर्माण दुर्ध्व समनुष्ठीयते तत्र चैवाहनी ते धर्माः समाम्नाता ततश्च तेषां शेष्याकांक्षायाम् अनुष्ठेयत् योपस्थितम् अग्निशोमीय अश्वपूर्वमेव सन्निधितो भाव्यत्वेन संबध्यते न तु सवनीयानुबन्ध्या पूर्वम् तत्सन्निधि विरहात् अथ कथमिति चेन्न सवनीय पशुः सौत्यनामकेऽहनि अहनि समाम्नादा अश्विनम् ग्रह गृहीत्वा त्रिवृत्तायूपम् परिवियाग्नेयम् पशु पशुम् अपाकरोतीति अनुबन्धस्य त्ववृथान्ते श्रूयमाणत्वाच्च तस्माद् उपपद्यते ये तेषां धर्माणां सन्निधि न अग्निशोम्यार्थत्वं सवनीयानुबन्ध्य योस्तु चोदकात्तेति दृश्यन्ते न च पाठ सादेश्यादेव तेषां तदर्थत्वं किं न स्यादिति वाच्यम् अग्निशोमीय पशोः सोमक्रय समीपे पाठात् तेन तत्त्वा संभवात् न च क्रयसन्निधा वेव तस्यानुष्ठानमपि किं न स्यादिति वाच्यम् स एष द्विदैवत्यः पशुरोपवसथेहनि आलब्धव्य इति वाक्यात् तस्य तत्रानुष्ठानानुपपत्तेः न च स्थानात् प्रकरणस्य बलीयस्त्वात्तेन तद्धर्माणां ज्योतिष्टोमार्थत्वमेव किं न स्यादिति वाच्यम् तस्य सोमयागत्वात्तर्धग्रहणायोगात् सोमो ह्यभीष्वादिन्द मानांकाक्षति न तु यूपनियोजन विषसनादिन तस्मात् आनर्थक्य प्रतिहतानां विपरीतं बलाबलमिति न्यायेन प्रकरणं प्रधानात् प्राच्यव्य स्थानात् पशुयागार्थत्वमेव पशुधर्माणां युक्तं भवति न चांगिन्य नर्थकाः संस्ते धर्मा अंगेषु त्रिष्वपि पशुयागे स्वविशेषणा वतिष्ठन्त्विति वाच्यं सन्निधिरूपस्य विशेषस्य दर्शितत्वात् न चाग्निशोमीयेऽपि तद्धर्माणां प्रकरणादेव विनियोगः किं न स्यादिति वाच्यम् क्लिप्तोपकारैरेव प्राकृतधर्मैरग्निशोमियस्तेति कर्तव्यताकाङ्क्षाया उपशान्तत्वात् अग्निशोमियो हि सान्नायाग प्रकृतो प्रकृतिको भवति तयोरुभयोरपि पशुप्रभवद्रव्यकत्वा विशेषात् सान्नायं दधिपयसि तत्र पशुयाग पयोयाग प्रकृति साक्षात् पशुप्रभवद्रव्यकत्वात् तच्चोक्तं सन्नायं वा तत्प्रभवत्वादिति तस्माच्चोदक प्राप्ते तद्धर्मैर्निराकारं पशुयागे तद्धर्माणां प्रकरणं विनियोजकं किन्तु स्थानमेवेत्यभिप्रत्याह अपवसत्येनित्यादिना अर्थबोधिनी। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ क्रिया है। प्रकृति स्थल में पशु धर्म शब्द का जिन क्रियाओं से तात्पर्य है वे तीन हैं: उपाकरण, दो पर्यग्निकरण और तीन नियोजन। प्रजापतेर्याजमानाः एवं इदं पशुम् इत्यादि दो मंत्रों को पढ़कर पशु को स्पर्श करना उपाकरण कहलाता है। कुश की लौ से तीन बार पशु की प्रदक्षिणा करने को पर्यग्निकरण कहा जाता है और पशु को रस्सी से यूप में बांधने की क्रिया को नियोजन कहा जाता है। ज्योतिष होम प्रकरण में तीन पशुओं का अनुष्ठेय रूप में पाठ मिलता है। वे हैं: एक अग्निशोमीय, दो सवनीय एवं तीन अनुबंध है। इनमें से अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान औपवसत्य नामक दिन में, सवनीय पशु का सौत्य नामक दिन में और अनुबंध पशु का अपवृत्त नामक दिन में किया जाता है। उपाकरण, पर्यग्निकरण एवं नियोजन इन धर्मों का पाठ उसी स्थान पर है जिस स्थान पर अग्निशोमीय पशु के अनुष्ठान का विधान है। निम्नलिखित तालिका विषय के स्पष्टीकरण में सहायक होगी: क्रमांक, दिन, अनुष्ठेय पशु, पठित क्रियाएं। एक, औपवसत्य अग्निशोमीय, उपाकरण, पर्यग्निकरण, नियोजन। दो, सौत्य सवनीय। तीन, अवभृत अनुबंध्य। उपाकरण आदि धर्मों के विषय में आकांक्षा होती है कि ये धर्म किसके लिए हैं, इनका क्या प्रयोजन या अर्थ है। इसी आकांक्षा को कैमर्थ्याकांक्षा कहते हैं। इस प्रकार कैमर्थ्याकांक्षा होने पर समीपस्थ अग्निशोमीय पशुजन्य अपूर्व साध्य रूप में अन्वित होता है, अर्थात उक्त आकांक्षा का शमन इस प्रकार होता है। उपाकरण आदि धर्मों का अपना स्वतंत्र कोई फल नहीं है। इन क्रियाओं का फल यही है कि ये अनुष्ठित होकर अग्निशोमीय पशु के अनुष्ठान से होने वाले अपूर्व को उत्पन्न करे, अर्थात अग्निशोमीय का उपाकरण आदि होकर तजन्य फल की उत्पत्ति हो सके। इन क्रियाओं का संबंध अग्निशोमीय पशु से इसलिए होता है कि वे समान दिन में पठित हैं। उसी औपवसत्य दिन में अग्निशोमीय पशु के अनुष्ठान का विधान है और उसी स्थान पर उपाकरण आदि धर्मों का भी पाठ है। अतएव पाठगत समीपस्थता के कारण अग्निशोमीय पशु से इन क्रियाओं का संबंध समझा जाता है। इस प्रकार उपाकरण आदि पशु धर्म अग्निशोमीय का अंग समझे जाते हैं। उपाकरण आदि क्रियाएं अन्य पशुओं के अंग प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य इस अतिदेश वाक्य से समझे जाते हैं। प्रसंग स्थान प्रमाण समाख्या नामक अंतिम प्रमाण से अधिक बलवान होता है। इसी की पुष्टि उदाहरण द्वारा की जा रही है। स्थानम समाख्यातः प्रबलम, तच्च स्थानम समाख्यातः प्रबलम, अतएव सुंधन मंत्र संन्याय पात्रांगम पाठ सादेश्यात् न तु पौरोडाशिकामिति समाख्यया पुरोडास पात्रांगम। अर्थ: पूर्वोक्त स्थान प्रमाण समाख्या नामक प्रमाण से बलवान है, इसलिए सुंधन मंत्र पाठ सादेश्य रूप प्रमाण से सान्नाय नामक पात्रों का अंग है, न कि पौरोडाशिकम, इस समाख्या से पुरोडाश पात्रों का अंग है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी एवं स्थानम निरूप्यतस्य समाख्यातः प्राबल्यमाह तच्च स्थानम इत्यादिना तच्चेति उक्त लक्षण लक्षितम चेत्यर्थ तंत्रे तृतीये चेदम स्थितम सुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे इत्ययम् मन्त्रः पौरोडाशमिति याज्ञिकः समाख्याते काण्डे पठितस्य च समाख्यया पुरोडाश काण्डोक्ता नाम उलूखल जुह्वादिनामपि शोधने अंगत्वमिति प्राप्ते राधान्तः न समाख्यया मन्त्रस्य पुरोडाश पात्रांगत्वं पदार्थयो भिन्नदेशस्थत्वेन सम्बन्ध स्यात् प्रत्यक्षत्वात् स्थान विनियोगे तु पदार्थ योर देश सामान्य लक्षण संबंध प्रत्यक्ष एव न च सा पदार्थयो संबंधवाचिका भवति। यौगिक शब्दानां द्रव्यवाचकत्वेन पदार्थ संबंधावाचकत्वात् तथात्वेवा तस्याः सा संबंधमात्रवाचिका तद्विशेषवाचिका वा स्यात् नाद्यः तन्मात्रो तौ। प्रयोजनाभावात् सर्वेषां यौगिक वचसां पर्यायता पत्तेश्च द्वितीये तु संबंध विशेषस्य संबंधि विशेष निरूप्य स्वादवश्यं संबंधिनौ वक्तव्यौ तथा च संबंधि प्रतिपत्त्यैव वाक्यार्थ प्रतिपत्ति न्यायेन संबंध प्रतिपत्ति संभवेय तत्रापि शक्ति कल्पने गौरववान समाख्यायाः संबंधवाचित्व तथा चोक्तम सर्वत्र यौगिकैः शब्दैः द्रव्यमेवाभिधीयते न च संबंधवाचित्वं संभव त्यतिगौरवात् तथा न्यच्च पाकं तु पचिरेवाह कर्तारं प्रत्ययोऽप्यकः पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्यचित् इति। किञ्च पौरोडाशिकमिति समाख्यायां प्रकृतिः पुरोडाशमात्रं विधत्ते तद्धित् प्रत्ययस्तु पुरोडाशस्येदमिति व्युत्पत्त्याकाण्डं न चैतावता कृत्स्नपुरोडाशपात्राणां मन्त्रसन्निधिः प्रत्यक्षो भवति किन्तु अर्थापत्या स कल्प्यते कथम् शृणु यदुक्तः सन्निधिर्न स्यात्तदा सुन्धन प्रतिपादकमन्त्रस्य पौरोडाशिक समाख्या न स्यात् न यन्न सन्निहिता नामिशेत्यादि मन्त्राणाम् आग्नेयकाण्डसमाख्या भवति भवति च सा सन्निहितानाम् युञ्जानः प्रथमं मनः इत्यादि मन्त्राणाम् ततश्च काण्ड समाख्यया सन्निधिं परिकल्प्य कल्पित काण्ड सन्निधिन्य स्थानुपपत्या परस्पराकांक्षारूपं कृत्स्नपात्र प्रकरणं कल्पयित्वा तद्द्वारा वाक्य लिंग श्रुतिश्च कल्पयित्वा तया श्रुत्या विनियोग इति स्थानापेक्षया विनियोगे समाख्याया विप्रकर्षः सन्नाया पात्राणां तु कुम्भी शाखा पवित्रादिनां शोधन मंत्र सन्निधि प्रत्यक्षो भवति कथम् शृणु इद्मा बर्हि संपादनस्य मुष्टि निर्वापस्य चांतरालम् सान्नाय पात्राणां देश उक्तः शोधन मंत्रश्चया मिथ्या बर्हि निर्वाप विषय योर्मन्त्रानुवाकयोर्मध्ये मध्यमेनुवाके पठ्यते तेन च प्रत्यक्ष सन्निधिना प्रकरणादीनां चतुर्णामेव कल्पना सन्निधिः समाख्यापेक्षया सन्निकृष्यते तस्मात् क्रमेण समाख्यां बाधित्वा सन्नाया पात्राणां शोधने शेषो अयं मन्त्रो भवतीत्यभिप्रत्याह अत एवेत्यादिना अत एव स्थानस्य समाख्यातः प्रबलत्वादेव सुन्धन मन्त्रः सुन्धद्वं दैव्याय कर्मण इति मन्त्रः सन्न्याय पात्राङ्गमिति सन्न्याययाग योरेन्द्र दध्येन्द्र पयसोह पात्राणां कुम्भी शाखा पवित्रादिनामङ्गमित्यर्थ पाठ सादेश्यादिति सन्निधि पाठादित्यर्थ पुरोडाश पात्राङ्गमिति पुरोडाश पात्राणां उलूखलादीनामङ्गमित्यर्थ अर्थबोधिनी। स्थान प्रमाण समाख्या से प्रबल है अतएव जहाँ दोनों प्रमाणों की प्रवृत्ति हो रही हो वहाँ स्थान प्रमाणकृत विनियोग मान्य होगा समाख्या प्रमाणकृत नहीं इसलिए सुन्धन मंत्र संन्याय पात्रों के प्रोक्षण का अंग होता है क्योंकि पाठ सादृश्य रूप स्थान प्रमाण से सुन्धन मंत्र संन्याय का अंग समझा जाता है और प्रकृत मंत्र पुरोडाश पात्रों का अंग नहीं होता कारण यह मंत्र पुरोडाश पात्रों का अंग समाख्या प्रमाण से समझा जा सकता है समाख्या द्वारा तो मंत्र दोनों प्रकार के पात्रों के प्रोक्षण का अंग समझा जाता है दर्श पूर्ण मास याग के विधान में पौरोडाशिक नाम का भी एक कांड है उसी कांड में सुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे देव यज्ञाय इस मंत्र का पाठ है यह मंत्र जैसा कि इसके अर्थ से ही प्रकट होता है किसी पदार्थ के शुद्ध करने में विनियुक्त होता है इसलिए इस मंत्र को सुन्धन मंत्र कहा जाता है इसी पौरोडाशिक कांड में दो प्रकार के पात्रों का पाठ है एकमात्र वे हैं जिन्हें संन्याय पाठ करते हैं इन पात्रों में यज्ञोपयोगी दूध एवं दही रखा जाता है संन्याय शब्द का अर्थ ही दूध दही होता है संन्याय पात्रों के अंतर्गत मुख्य पात्र कुंभी शाखा पवित्र अभिधानी और दोहन पात्र आदि हैं इन्हीं संन्याय पात्रों के समीप सुंदन मंत्र का पाठ प्राप्त होता है। दूसरे पात्र वे हैं जिन्हें पुरोडाश पात्र कहते हैं। उलूखल, मूसल, कृष्णाजिन और सिलबट्टा आदि मुख्य पुरोडाश पात्र हैं। सुंदन मंत्र सान्नाय पात्रों की सन्निधि में पठित है, अतएव वह सान्नाय पात्रों के प्रोक्षण का अंग होता है। कारण मंत्र द्वारा कैमर्थ्यांकांक्षा होने पर समीपस्थ सान्नाय पात्र का भाव्य अपूर्व ही साधकत्वेन अन्वित होता है। समाख्या द्वारा विनियोग मान्य पर मंत्र संपूर्ण कांड में पठित सभी पात्रों के प्रोक्षण का अंग होगा, चाहे वे सान्नाय पात्र हों या पुरोडाश पात्र। यह इसलिए कि मंत्र का पाठ पौरोडाशिक कांड में प्राप्त होता है और मंत्र का सानिध्य पौरोडाश कांड पठित सभी पात्रों से हो सकेगा। समाख्या द्वारा विनियोग मान्य पर समाख्या एवं विनियोग के मध्य स्थान प्रकरण, वाक्य लिंग एवं श्रुति की कल्पना, इन पांच व्यापारों का व्यवधान होगा, जबकि स्थान द्वारा विनियोग मान्य पर स्थान एवं विनियोग के बीच केवल प्रकरण, वाक्य लिंग एवं श्रुति की कल्पना, इन चार व्यापारों का ही व्यवधान होगा। अतएव समाख्या विनियोग से विप्रकृष्ट है एवं स्थान सन्निकृष्ट, अतएव स्थान द्वारा विनियोग मान्य होगा, समाख्या द्वारा अमान्य। इसलिए प्रकृतिक मंत्र सान्नाय पात्रों के प्रोक्षण का अंग है, न कि पुरोडाश पात्रों के प्रोक्षण का भी। प्रसंग अंतिम प्रमाण समाख्या के स्वरूप का निरूपण। 46 समाख्या लक्षणम्। समाख्या यौगिक शब्द सा च द्विविधा वैदिकी लौकिकी च, तत्र होतुश्चमस भक्षणांगत्वम होतृचमस इति वैदिकक्यया समाख्यया, अध्वर्योस्तत्पदार्थंगत्वम लौकिक्या आध्वर्यवमिति समाख्यया इति संक्षेपः, तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट् प्रमाणानि। अर्थ, यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। समाख्या के दो प्रभेद होते हैं, एक वैदिक समाख्या एवं लौकिक समाख्या। होत्र चमस इस वैदिकी समाख्या से होता नामक ऋत्विक चमस भक्षण रूप क्रिया का अंग समझा जाता है। आध्वर्यम इस लौकिक समाख्या से अध्वर्यु नामक ऋत्विक तत्व क्रियाओं का अंग समझा जाता है। इस प्रकार श्रुति आदि छह प्रमाणों का संक्षेप में निरूपण किया गया। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी। एवं स्थानम निरूप्य समाख्याम लक्ष्यति। समाख्या यौगिक शब्द इति, अत्र यौगिक शब्दत्वं लक्षणम्। समाख्येति लक्ष्यम् शब्द चतुर्धा यौगिको रूढ़ो, योग रूढ़ो, यौगिक रूढ़श्चेति, तत्राध्वर्यवम् वाचक इत्यादिर यौगिक स एव समाख्येति चोच्यते, यत्रावयवार्थ एवं ज्ञायते स यौगिक इति तन्निर्वचनम्। यो अवयव शक्ति निरपेक्षया समुदाय शक्त्यैवार्थं बोधयति स रूढ़, यथा गवादि शब्दः यस्य शक्ति विषय समुदाय शक्त्यापि प्रवर्तते स योग रूढ़, यथा पंकजादि शब्दस्यैवाव यव शक्त्या पंकजनि कर्तृत्वेन समुदाय शक्त्या च पद्यत्वेन रूपेण पद्म बोध कत्वात् यस्य वशक्त शक्ति समुदाय शक्तिभ्याम रूढ़ार्थं यौगिकार्थं च स्वातंत्रेण बोधयति स यौगिक रूढ़, यथोद्भिदा दिशब्द स च ऊर्ध्वभेदन कर्तित रुगुल्मादिकं बोधयति याग विशेषामपि चेति स यौगिक शब्दात्मिका समाख्या, तत्र तयोः समाख्ययोर् मध्य इत्यर्थ। होतुरिति भक्षणस्य क्रियात्मकत्वेन प्राधान्य तत्कर्तुर् होतुर्भवति तदंगत्वमित्यर्थ, तत्पदार्थंगत्वमिति पुरो अध्वर्युर् विभजति त्यादिना यजुर्वेदेन विहितानां पदार्थानां अंगत्वमित्यर्थ, लौकिकेति यागिकः परिकल्पितेत्यर्थ, तृतीये स्थितं प्रयतु होतुश्चमस इत्यत्र समाख्या भक्ष हेतु हरिरसि हारियोजन इत्यनेन मंत्रेण गृह्यमाणो ग्रहो हारियोजनः, तत्र वाक्यं वषट्कर्तुः प्रथम भक्ष इत्यत्र वषट्कार इत्येव मुक्तत्वात्रय एव भक्ष हेतव इति प्राप्ते, राधान्तः हविर्धाने ग्रामभिर्विशुत्याह्वनीये श्रुत्वा प्रत्यञ्चः परित्य सदसि भक्षान् भक्षयन्तीति श्रूयते, उत्तरवेद्याः प्रतिचिने सदसः प्राचीने मण्डपे भिषवः उत्तरवेद्याम् होमः सदसि भक्षणम् तत्राभिषव होमयोर वचनांतर प्राप्तयोर विधेयतया तयोर निमित्तत्वेन पूर्व भक्षणम विधीयते तस्मात् स्थानादिव देतयोरपि भक्षण हेतुत्वमस्ति त्यभिप्रत्याह संक्षेपिति श्रुत्यादि प्रमाणस्य विनियोग विधिस हकारिणो निरूपण उपसंहरति तदेवमिति अर्थबोधिनी। यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। यौगिक शब्द के अवयव के अभिधेय अर्थ से ही यौगिक शब्द का अर्थ समझा जाता है। जैसे पाचक शब्द का पकाने वाला अर्थ शब्दावयवभूत पच धातु एवं डूल प्रत्यय के अर्थ से अभिहित होता है। अभिप्राय यह है कि जिस पद जिस शब्द से केवल अवयवार्थ का ही बोध हो उसे यौगिक कहा जाता है। यहाँ यौगिक शब्द रूप समाख्या के दो प्रभेद माने गए हैं, एक वैदिकी एवं दो लौकिकी। वैदिकी समाख्या ऐसे यौगिक शब्दों को कहते हैं जो वेद में पठित होते हैं, साक्षात वेद का अंग होते हैं। जैसे हुत्र चमसह शब्द वेद में पठित है, इसका अर्थ है होता का चमस, अर्थात होता का चमस नामक वह पात्र जिससे वह सोमरस का पान करता है। उक्त विधेय अर्थ होत्र चमसह या होतुश्चमसह इस यौगिक शब्द से निकलता है। वेद में प्रयतु होतुश्चमसह का पाठ है। लौकिक समाख्या वेद में साक्षात पठित नहीं होती अपितु याज्ञिकों द्वारा निष्पन्न होती है। जैसे आद्वर्यम यह यौगिक शब्द वेद पठित नहीं है अपितु मानव निष्पन्न है। वैदिकी एवं लौकिक की दोनों सामाख्याएं विनियोग बोध में विधि की सहायता करती हैं। होत्रिश्चमसह या होत्र चमसह से ज्ञात होता है कि होता चमस का अर्थ चमस भक्षण का अंग है। यहाँ क्रिया प्रधान है, क्रिया है चमस भक्षण अर्थात चमस संज्ञक पात्र में रखे हुए सोम का पान करना। अतएव चमसस्थ सोम का पान करने के कारण होता अंग हुआ और चमस भक्षण अंगी। आध्वर्यवम लौकिक सामाख्या है, इसका अर्थ है अध्वर्यु का कर्म या अध्वर्यु संबंधी। अध्वर्यु नामक ऋतु का संबंध यजुर्वेद से है, अतएव आध्वर्यम समाख्या से यह बोध होता है कि अध्वर्यु यजुर्वेद की सभी क्रियाओं का अंग होता है। इस प्रकार विनियोग विधि के द्वारा अंगांगी भाव बोधक में सहायक होने वाले श्रुति आदि सभी छह प्रमाणों का विवेचन समाप्त हुआ। प्रसंग अब यहाँ विनियोग विधि द्वारा विनियुक्त अंगों का विभाजन प्रस्तुत किया जा रहा है। विनियोजितांगानि द्विविधानि एतत् सहकृतेन विनियोग विधिना समिदादि भी रूपकृत्य दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेत इत्येवं रूपेण यानि विनियोज्यन्ते तान्यंगानि द्विविधानि सिद्ध रूपाणि क्रिया रूपाणि चेति तत्र सिद्धानि जाति द्रव्य संख्यादिनि यानि च दृष्टार्थान्येव क्रिया रूपाणि च द्विविधानि गुण कर्माणि प्रधान कर्माणि चेति एतान्येव सन्निपत्योपकारकाणि आराधोपकारकाणीति चोच्यन्ते। अर्थ इन श्रुत्यादि छह प्रमाणों से सहायता प्राप्त करने वाली समिदा दीदी भी रूपकृत्य दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत। समित आदि यागों से उपकृत हुए दर्श एवं पूर्णमास नामक याग के अनुष्ठान से इष्ट का संपादन करना चाहिए। इस प्रकार की विनियोग विधि के द्वारा दो अंग विनियुक्त होते हैं, एक सिद्ध रूप अंग एवं दो क्रिया रूप अंग। इनमें जाति द्रव्य एवं संख्या आदि सिद्ध रूप अंग हैं। इन सबका प्रयोजन दृष्ट ही रहता है। क्रिया रूप अंग के दो प्रभेद होते हैं, एक गुण कर्म एवं दो प्रधान कर्म। इनमें से गुण कर्म को सन्निपत्योपकारक कर्म और प्रधान कर्म को आराधोपकारक कर्म कहते हैं। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी एतः षड्भिः प्रमाणैः सकृतेन विनियोग विधिना यान्यंगानि विनियोज्यन्ते तानि विनियोग विधे स्वरूपम् अनुवदन्ति भजते एतदित्यादिना तत्र सिद्धरूपाणि निर्दिशति तत्रेति सिद्धरूपक्रियारूपाणां मध्य इत्यर्थ जाति पशुत्वादि द्रव्यम बृहादि संख्या एकत्वादि तेषां व्याग स्वरूपोप कारकत्वेन दृष्टार्थत्वमेवेत्याह तानि चेत् क्रियारूपाणां विभाग द्वारा लक्षणमाह क्रियारूपाणि इत्यादिना गुणस्य कर्मांगस्य द्रव्यादेह संस्कार कराणि क्रिया विशेष रूपाणि गुण कर्माणि यथा वधातादिनि प्रधानस्य फलापूर्वस्योपकारकाणि तानि प्रधानकर्माणि यथा प्रयाजादिनि तेषामेव लक्षणमाह एता नैवेद्यादिना अर्थ बोधिनी। प्रथम वाक्य का सार अर्थ यह है कि विनियोग विधि के द्वारा जो अंग विनियुक्त किए जाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक विनियोग विधिना यानी अंगानि विनियोज्यन्ते तानि द्विविधानि। प्रथम वाक्य में विनियोग विधिना पद के दो विशेषण हैं, एक एतत् सहकृतेन एवं दो सामिदादि भीरूपकृत्य दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत इत्येवं रूपेण। विनियोग विधि में पूर्वोक्त इन एतत् श्रुति आदि छह प्रमाणों से विनियोग बोध में सहायता मिलती है। एतत् सहकृतेनानेन विधिनांगत्वं परोद्देश प्रवृत्ति कृति साध्यत्व रूपं परार्थ्या परपर्यायं ज्ञायते। इसलिए विनियोग विधि को एतत् सहकृत कहा गया है। दर्श एवं पूर्णमास मुख्य याग है, इनके अंग याग प्रयाज एवं अनुयाज है। समिधो यजति आदि विधियों के द्वारा प्रयाज एवं अनुयाज के विधान का अनुवाद होता है। इसका सांकेतिक विवेचन विभाग संख्या 38 में किया गया है। अतएव समिधि याग आदि अंग है एवं दर्श पूर्णमास अंगी। इस प्रकार अंगांगी भाव बोध रूप विनियोग के कारण समिदादि भी रूप कृत्य दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत इत्येवं रूपेण पद समूह को विनियोग विधिना का विशेषण मानना उचित ही है। विनियोग विधि द्वारा विनियुक्त अंगों के दो प्रभेद हैं, एक सिद्ध रूप एवं दो क्रिया रूपा। सिद्ध रूप अंग को हम क्रिया भिन्न कह सकते हैं, उसका स्वरूप पहले से ही संपन्न हुआ रहता है, वह क्रिया की भांति साध्य नहीं होता, इसलिए उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्ध रूप अंग जाति द्रव्य एवं संख्या आदि के रूप में अनेक प्रकार का होता है। पशुत्व जाति ब्रीही एकत्व संख्या आरुण्य गुण अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या कृणाति एमां ग्रिम्भणन रसनामृतस्य मंत्र इत्यादि सब सिद्ध अंग के उदाहरण हैं। इनका प्रयोजन दृष्ट होता है। इनका दृष्ट प्रयोजन यही है कि इनके द्वारा साध्य क्रियाओं का अनुष्ठान संपन्न होता है। द्वितीय प्रभेद क्रियारूप अंग के दो प्रभेद हैं, एक गुणकर्म दो प्रधान कर्म। गुणकर्म क्रिया किसी क्रिया के अंगभूत द्रव्य आदि के अंग होते हैं, अर्थात गुणकर्म साक्षात प्रधान क्रिया का अंग नहीं होता अपितु परंपरया होता है। प्रधान कर्म साक्षात प्रधान क्रिया का अंग होता है, जैसे प्रयाज प्रधान क्रिया दर्श पूर्णमास का साक्षात अंग है। सभी अंग क्रियाओं में प्रधान होने के कारण ही प्रधान कर्म पद में प्रधान पद का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रयाज अंग क्रियाएं हैं, किंतु इनका अंगी दर्श पूर्णमास है जो कि अंग नहीं है। इस प्रकार प्रयाज सभी अंग क्रियाओं में प्रधान है। गुण कर्म को सन्निपत्योपकारक एवं प्रधान कर्म को आराधोपकारक कहते हैं। इन्हें सन्निपत्योपकारक इसलिए कहा जाता है कि ये किसी के अंग बनकर उसके माध्यम से मुख्य क्रिया का उपकार करते हैं। सन्निपत्योपकारक कर्म को आश्रयी कर्म भी कहा जाता है। आराधोपकारक स्वतः अव्यवधानेन और किसी का अंग न बनकर मुख्य क्रिया का उपकार करते हैं। प्रयाज स्वतः दर्श पूर्णमास का उपकार करते हैं, न कि और किसी का अंग बनकर, इसलिए प्रयाज आराध उपकारक है। यद्यपि आराधर समी पयोह इस कोश वाक्य के अनुसार आरात यह पद दूरत्व एवं सामीप्य दोनों अर्थों का वाचक है। ऐसी परिस्थितियों में सन्निपत्योपकारक को भी दूरत्व अर्थ लेकर आराध उपकारक कहा जा सकता है। तथापि प्रकृत आराध उपकारक इस शब्द के अंतर्गत आराध शब्द को केवल सामीप्यवाची मानकर ये दो विभाग किए गए हैं। प्रसंग सन्निपत्योपकारक कर्म का लक्षण एवं विभाग। सन्निपत्योपकार कारण्यंगानि कर्मांग द्रव्यादुद्देशेन विधीयमानं कर्म सन्निपत्योपकारकम् यथावघात प्रोक्षणादि तच्च दृष्टार्थम् अदृष्टार्थम् दृष्टात् अदृष्टार्थम् चेति तत्र दृष्टार्थम् अवघातादि अदृष्टार्थम् प्रोक्षणादि दृष्टादृष्टार्थम् पशु पुरोडाशादि तद्धि द्रव्यत्यागशेनैव अदृष्टम् देवतोद्देशेन च देवता स्मरण दृष्टम् करोति। अर्थ कर्म के अंगभूत द्रव्य आदि के उद्देश्य से विहित कर्म को सन्निपत्योपकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए अवघात एवं प्रोक्षण आदि सन्निपत्योपकारक कर्म है। सन्निपत्योपकारक कर्म के तीन प्रभेद हैं, एक दृष्टार्थक दो अदृष्टार्थक एवं तीन दृष्टादृष्टार्थक। इनमें से दृष्टार्थक कर्म का उदाहरण अवघात आदि, अदृष्टार्थक का उदाहरण प्रोक्षण आदि और दृष्टादृष्टार्थक का उदाहरण पशु एवं पुरोडाश है। पशु एवं पुरोडाश को दृष्टा दृष्टार्थक इसलिए कहा जाता है कि इनके दृष्ट एवं अदृश्य दोनों प्रकार के प्रयोजन होते हैं। द्रव्य त्याग अंश में तो पशु एवं पुरोडाश का प्रयोजन अदृष्ट है और उनसे देवता का स्मरण होना रूप दृष्ट प्रयोजन भी सिद्ध होता है, अतएव इस अंश में ये दृष्टार्थक भी है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी सन्निपत्योपकारकाणाम लक्षण माह कर्मांगेत्यादिना यानी चांगानी साक्षात परम्परया वा विहित फल साधन याग शरीरम निष्पाद्य तद्वारा तदुत्पत्य पूर्वोपयोगिनी तानि सन्निपत्योपकारकाणिति फलितम् द्रव्यादित्यादिना देवतादि परिग्रह क्रियारूपत्वं सर्वेषां कर्मणा गुण कर्मत्व अवघातादिनां प्रधान कर्मत्वं प्रयाजादिनां सन्निपत्योपकारकत्वं अवघातादिनामारादुपकारकत्वं प्रयाजादिनां च लक्षणमिति समुदायतात्पर्यं तत्रोदाहरणम् आह। यथावघातेति सन्निपत्योपकारकाणां पुनरपि त्रिविधं विभागं करोति तच्चेत्यादिना तच्च सन्निपत्योपकारकं चेत्यर्थ दृष्टार्थम् उदाहरति दृष्टार्थम् अवघातादिनि अवघातास्ते अवघातादेस्तुष्मि विमोकादि रूप दृष्ट द्वारा यागस्वरूपत् उत्पत्त्य पूर्व हेतुत्वात् संभवति तस्य दृष्टार्थमित्यर्थ। अदृष्टार्थम् उदाहरति अदृष्टार्थमिति प्रोक्षणा देर्विगृहित संस्कार रूपातिशया दृष्ट द्वारा प्रधान यागोत्पत्त्य पूर्व हेतुत्वा संभवति केवला दृष्टार्थत्वं प्रोक्षणम् अंतरेणापि यागस्वरूपा नुपपत्त्य भावा दृष्टोपकारा संभवात् दृष्टादृष्टोभयार्थम् उदाहरति दृष्टादृष्टार्थमिति पशुपुरोडाशादित्यादिना यागादि संग्रह तद्धि पशुपुरोडाशादि इत्यर्थ। अदृष्टमिति यागोत्पत्त्य पूर्व द्वारा फलापूर्वमित्यर्थ। अर्थबोधिनी किसी कर्म के अंगभूत द्रव्य आदि का अंग होने वाले कर्म को सन्निपत्योपकारक कर्म कहते हैं। दश पूर्ण मास कर्म है, इनका अंग द्रव्य ब्रीही है। ब्रीही को उद्देश्य करके ब्रीहीन प्रोक्षति द्वारा विधीयमान प्रोक्षण कर्म सन्निपत्योपकारक कर्म हुआ। सन्निपत्योपकारक कर्म के तीन प्रभेद हैं, एक दृष्टार्थक, दो अदृष्टार्थक एवं तीन दृष्टार्थ दृष्टार्थक। दृष्टार्थक उसे कहा जाता है जिसका प्रयोजन दृष्ट हो, अर्थात इस जन्म में ही प्रत्यक्ष सिद्ध हो। ब्रीहीन वहन्ति विधि द्वारा विहित अवघात कर्म का तुष विमोचन प्रत्यक्ष प्रयोजन है, अतएव अवघात को दृष्टार्थक सन्निपत्योपकारक कर्म कहा जाएगा। दूसरा प्रभेद अदृष्टार्थक है, ब्रीहीन प्रोक्षति विधि विहित प्रोक्षण क्रिया इसका उदाहरण है। प्रोक्षण का दृष्ट प्रयोजन नहीं है क्योंकि उससे ब्रीही की निष्पत्ति नहीं होती। देखिए विभाग संख्या 26। प्रोक्षण से केवल अपूर्व उत्पन्न होता है, वह अपूर्व दृष्ट नहीं अदृष्ट होता है, इसलिए प्रोक्षण आदि कर्म अदृष्टार्थक प्रभेद के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रभेद दृष्टार्थक है, पशु याग एवं पुरोडाश याग आदि इसके उदाहरण है। देवता के लिए पशु पुरोडाश आदि द्रव्य का त्याग करने से अदृष्ट उत्पन्न होता है, अतएव द्रव्य त्याग अंश में पशु पुरोडाश याग अदृष्टार्थक है। द्रव्य त्याग काल में देवता का स्मरण किया जाता है, अतएव पशु पुरोडाश आदि क्रिया का दृष्ट प्रयोजन देवता स्मरण हुआ, अतएव इसे दृष्टार्थक भी माना जाता है। इस प्रकार पशु पुरोडाश आदि याग दृष्टार्थक के उदाहरण हुए। प्रसंग आराधुपकारक कर्म का लक्षण। आराधुपकारकाण्यंगानी द्रव्यादुनुदिश्य केवलं विधीयमानं कर्म आरादुपकारकं यथा प्रयाजादि आरादुपकारकं च परमापूर्वोत्पत्ता वेवोपयुज्यते। सन्निपत्योपकारकं तु द्रव्यदेवता संस्कार द्वारा याग स्वरूपे प्युपयुज्यते इदमेव चाश्रयि कर्मेत्युच्यते तदेवं निरूपितः संक्षेपतो विनियोग विधि। अर्थ जब केवल कर्म का ही विधान किया गया हो न कि द्रव्य आदि को उद्देश्य करके उस कर्म का विधान हुआ हो तब ऐसी स्थिति में उस कर्म को आराधुपकारक कहते हैं। आराधुपकारक कर्म मुख्या पूर्व की उत्पत्ति में सहायक होता है, जबकि सन्निपत्योपकारक द्रव्य एवं देवता के संस्कार के द्वारा याग के स्वरूप में भी काम आता है। यही दोनों में अंतर है। इसी सन्निपत्योपकारक कर्म को आश्रयी कर्म भी कहते हैं। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी आरादुपकारकाणां लक्षणमाह द्रव्यादनुदिश्येति आत्मसमवेता पूर्वजनकान्या रादुपकारकाणित्यपि वदन्ति तत्रोदाहरणमाह यथेति प्रयाजादित्यादिना जभागानुयाजादि परिग्रह अत्र परमा पूर्वोत्पत्ता वेवेत्येव कारेण द्रव्य देवतागत संस्कार जन द्वारा याग स्वरूपोपयोगित्वमारादुपकारकाणां निरस्यते याग स्वरूपे पित्यपि न सन्निपत्योपकारकाणां द्रव्य देवता संस्कार द्वारा यागोत्पत्य पूर्वेप्युपकारकत्वं समुच्चीयते अत्र च ब्रह्यादीनां तिष्ठ द्वारा पुरोडाश निर्वर्तकत्वं तद्वारा याग शरीरत दुत्पत्ति पूर्वजनकत्वं च भवति याज्यानुवाक्यार देवता संस्कार द्वारा यागोत्पत्त्या पूर्वा दा उपयोगित्वं देवतायाश्च साक्षाद् याग शरीर निर्वर्तकत्वं तद्द्वारा तदुत्पत्त्य पूर्व निष्पादकत्वं च भवति यागस्य देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागस्वरूपत्वाद् द्रव्यदेवते खलु यागस्वरूप मित्युपगम्मा चेति ध्येयम् इदमेव चेति सन्निपत्योपकारकमेव च न त्वारादुपकारकमित्यर्थः आश्रयी द्रव्यदेवतादिरूप आश्रयो स्यास्तीत्याश्रयी पारिभाषिकी वाश्रयी कर्मेति संज्ञा इदमेव सामवायी कर्मेत्यपि वदन्ति किंच सामान्यतः कर्म द्विविध मर्थ कर्म गुण कर्म चेति तत्रात् समवेता पूर्वजनकं कर्मार्थ कर्मं यथा अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास प्रयाजानुयाजादिकं तस्यात्म गत फला पूर्वजनकत्वा द्रव्यादि संस्कार जनकं द्वितीयं तदेव सन्निपत्योपकारकम् इत्युक्तम् तदपि द्वितीयम् उभयोक्षमाण संस्कार युक्त संस्कारकं चेति तत्रावघात प्रोक्षणादिक मुपयोक्ष्यमाण संस्कारकं यागे बृहणामुभयोक्ष्यमाणत्वात् प्रतिपत्ति कर्म चात्वाल कृष्ण विषाण प्रासेनडा भक्षण दीक मुपयुक्त कृष्ण विषाण पुरोडाशादि संस्कारकं द्वितीयम् उपयुक्तस्या किरणकर्कस्यावशिष्यमाण द्रव्यादेर विहित देशे संस्कार विशेष हेतु प्रक्षेपकः प्रतिपत्ति कर्म उपयोक्ष्यमाण संस्कार भिन्न संस्कार कर्मत्वं प्रतिपत्ति कर्मत्वमित्यपि वदन्ति ननु भवतु कश्चिद् दृढा भक्षणस्य प्रधान यागोपयुक्ता किरणकर पुरोडाश द्रव्य प्रक्षेपात्मकत्वा प्रतिपत्ति कर्मत्वम् चात्वाले कृष्ण विषाण प्रासनस्याग्निहोत्रादि कर्म वद्विहित बहिर्देश विशेषित प्रक्षेप क्रियात्मकत्वार्थ कथम् प्रतिपत्ति कर्मत्वं तथा च तद्वर्थक कर्मत्वमेव तस्य तदित्थं श्रूयते ज्योतिष्टोमे नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्ण विषाणानां प्रास्यतीति यजमानेन दक्षिणा दत्ता ऋत्विक भीर्यदा नीतास्तदा यजमानः स्वहस्ते घृतं कृष्णमृगस्य श्रृङ्गं चात्वाल नामक गर्ते परित्यजेत् सो अयं परित्यागो अर्थकर्म कुतः सप्रयोजनत्वलाभात् प्रतिपत्ति कर्मत्वे पूर्वभावे निरर्थकः स्यात् तस्माद् पूर्व लाभार्थकर्मत्वमेव न तु प्रतिपत्ति कर्मत्वमिति चेन्न कृष्णविषाणया कण्डूयतीति तृतीया श्रुत्या यजमान शिरः कण्डुता उपयुक्तस्य कृष्ण विषाणस्य प्रतिपत्त्यपेक्षत्वात् न च प्रतिपत्ति कर्मत्वे त्यन्तं पूर्वाभावः चात्वाल एव प्रासनमित्येवं विधस्य नियमस्य वैधत्वेन प्रासन क्रिया प्रयुक्ता पूर्वाभावे अपि नियमापूर्व सद्भावात् तस्मात् प्रासनं प्रतिपत्ति कर्मेति तमेतं सर्वं अभिप्रेत्य विनियोग विधीन रूपण उपसंहरति तदेवमिति अर्थबोधिनी ऐसा कर्म जिसका विधान किसी द्रव्य आदि के अंग रूप में न होकर केवल कर्म के रूप में ही होता है आराधुपकारक कहा जाता है। प्रयाज नामक यागों का विधान प्रयाजाह कर्तव्याह इस विधि द्वारा होता है। यहाँ केवल प्रयाज संज्ञक यागो कर्मों का ही विधान है। प्रयाज किसी द्रव्य आदि के अंग नहीं है, अपितु द्रव्य आदि ही प्रयाज के अंग होते हैं। प्रयाज अंग हैं किंतु प्रधान याग के ही। दर्श पूर्ण मास के अनुष्ठान से फलापूर्व अर्थात परमापूर्व उत्पन्न होता है। इसी परमापूर्व से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रयाज संज्ञक यागों का साध्य परमापूर्व को उत्पन्न करना होता है। इसलिए कहा गया है कि आराध उपकारकम च परमापूर्वोत्पत्ता वेवोपयुज्यते। अभिप्राय यह है कि आराध उपकारक कर्म प्रधानतम याग का ही अंग होता है। दर्श पूर्ण मास प्रधानतम याग है। प्रयाज इन्हीं प्रधानतम दर्श पूर्ण मास नामक यागों के ही साक्षात अंग हैं। इसलिए इनकी संज्ञा आराध उपकारक है। आराध उपकारक परमापूर्व के आराध समीपता से अर्थात साक्षात रूप से उपकारक होते हैं, जबकि सन्निपत्योपकारक सन्निपत्य अर्थात किसी और में निपत्य गिरकर अर्थात अंग बनकर उपकारक होते हैं। अर्थात सन्निपत्योपकारक किसी मध्यवर्ती अंगी का आश्रय लेकर परमापूर्व की उत्पत्ति में उपकारक होता है। यही कारण है कि इससे आश्रयी कर्म जिसका कोई आश्रय हो अर्थात जो किसी के आश्रित होकर प्रधानतम कर्म का अंग बन पाता हो कहा जाता है। इस प्रकार ग्रंथकार ने विनियोग विधि का संक्षेप में विवेचन किया है। प्रसंग विनियोग विधि का निरूपण करने के पश्चात अब तृतीय विधि प्रयोग विधि के स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है।